नमस्कार भारत, आज 17 अगस्त दिन गुरुवार, स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। हिजबुल मुजाहिदीन को अमेरिका ने माना चरमपंथी संगठन, लगाया प्रतिबंध। बाढ़ की वजह से बिहार में अब तक 72 लोगों की मौत,
मिल ही नहीं रहा, लापता।
कितना आदमी मर करके फंस गया, इसका कोई गिनती नहीं है।
सर हम लोग छत पे रह रहे हैं, छत पे, कोई गाछ पे, कोई पानी पे।
लंका जैसा वहाँ टप्पू बना हुआ है।
अम्मा कैंटीन की तर्ज पर इंदिरा कैंटीन की शुरुआत, और साथ ही सुनिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से खास बातचीत।
एक खास जमात हिंदुस्तान जिसे RSS कहते हैं, वो चाहती है कि कश्मीर का जो इलाका है जिन बुनियादों पे किया गया था वो हटाई जाए, क्योंकि आज उनकी हुकूमत है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, मानसी दास से। अमेरिका ने भारत प्रशासित कश्मीर के सबसे बड़े सशस्त्र संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को विदेशी चरमपंथी संगठन घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि अमेरिका में मौजूद संगठन की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इस साल के आरंभ में अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद इस संगठन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन को चरमपंथी घोषित कर दिया था। भारत पाकिस्तान 1979 में बने इस संगठन सियरालियोन में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस सप्ताह राजधानी फ्रीटाउन में बाढ़ और पहाड़ खिसकने के कारण मारे गए 400 लोगों में से लगभग आधे लोगों के शवों को दफन कर दिया गया है। शवों की पहचान करने का काम फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि जो शव दफन किए गए हैं उनमें पहचाने जा चुके और बुरी तरह गल चुके शव शामिल हैं। लगभग 600 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा से प्रभावित लोगों की आप बीती। फ्री टाउन में रहने वाले शेखू जेलोह बता रहे हैं कि मेरे भाई मूसा मनासारे वहीं मर गए। उनकी एक पत्नी और दो बच्चे थे, कोई नहीं बचा, बस खत्म हो गए। मेरे बड़े भाई भी मर गए, वो कॉलेज जाना चाहते थे, लेकिन अब जब मैं नहीं होता था तो वो मेरे परिवार का ख्याल रखते थे। लनसाना कामरा बता रहे हैं कि उस दिन के बाद से मैं अपने 9 बच्चों को खो चुका हूं। मेरी दूसरी और तीसरी पत्नी नहीं रही, बस मैं और मेरी पहली पत्नी बचे हैं। ये थे फ्रीटाउन में रहने वाले शेख हुजलो और लनसाना कामरा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका के शार्लोट्सविल में हाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों के लिए दोनों पक्षों के लोगों को जिम्मेदार ठहराने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दो सलाहकार समिति से व्यापार से जुड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने इन समितियों को रद्द कर दिया है। एक साझा बयान में दो पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज HW Bush और उनके बेटे जॉर्ज W Bush ने अमरीकियों से अपील की है कि नस्लवाद और यहूदी विरोधी भावनाओं को वो अस्वीकार करें। देश के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि इस विवाद के बीच वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं।
What happened in Charlottesville was a tragedy. And the president has been clear on this tragedy and so have I.
शार्लोटविल में जो हुआ वो त्रासदी था और इस बारे में राष्ट्रपति की राय स्पष्ट है। मैंने रविवार रात को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में उनसे विस्तार से बात की है और मैं उनके साथ हूँ और उनके कहे शब्दों का समर्थन करता हूँ। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि वह ब्लू व्हेल चैलेंज मोबाइल गेम के लिंक को हटाने में विफल होने वाले वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ब्लू व्हेल बच्चों और युवाओं को खुद को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। कई शिकायतें मिलने के बाद गेम को भारत में बैन किया गया है। बताया जाता है कि ये गेम खेलने वालों को 50 दिनों के भीतर कई खतरनाक लक्ष्य पूरे करने के लिए कहता है, जिनमें कभी कभी आत्महत्या करने के निर्देश भी होते हैं। स्पेन के तटरक्षक बलों ने कल मोरक्को से यूरोप की तरफ आने वाले लगभग 600 प्रवासियों को 15 जहाजों से बचाया है। इन जहाजों में पैडल नौका और जेट स्की भी शामिल हैं। स्पेन के एक अधिकारी के अनुसार बीते साल की तुलना में इस साल प्रवासियों से भरे 3 गुना अधिक जहाज देखे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस साल 8,000 से अधिक प्रवासी स्पेन पहुंचे हैं, जबकि समंदर के रास्ते स्पेन आने की कोशिश में 100 से अधिक प्रवासी डूब गए हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। अमेरिका ने कश्मीरी चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को विदेशी आतंकवादी संगठन मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी करके कहा है कि ऐसा करने से आतंकी इकुटों को अलग थलग करने में मदद मिलेगी। इस खबर पर और जानकारी के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
हिजबुल मुजाहिदीन को विदेशी आतंकवादी संगठन और वैश्विक आतंकी गुट करार देते हुए अमेरिका ने उस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक बयान जारी कर कहा, हिजबुल मुजाहिदीन को विदेशी आतंकवादी गुट करार देकर अमेरिकी जनता और विश्व समुदाय को ये बताना है कि हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकवादी गुट है और इस तरह आतंकवादियों और आतंकी गुटों को अलग थलग किया जाता है और इन गुटों की अमरीकी वित्तीय संस्थानों के प्रयोग पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। इसके अलावा इनके खिलाफ कार्रवाई करने में अमरीकी सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सरकारों को भी मदद मिलती है। अमरीका का कहना है कि इस तरह हिजबुल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगाकर आतंकी हमले करने के लिए धन जुटाने से भी रोका जा सकेगा। इस प्रतिबंध के तहत अमरीका में मौजूद इस संगठन की संपत्ति को जब्त किया जाएगा और अमरीकी नागरिकों के इस संगठन के साथ किसी प्रकार के संबंध रखने पर भी पाबंदी होगी। इसी साल जून महीने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे के दौरान अमरीकी सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को भी वैश्विक आतंकी घोषित किया था। इससे पहले सन 1997 में अमरीका ने हरकतुल मुजाहिदीन और सन 2001 में दो संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को भी आतंकी गुटों की सूची में शामिल किया था। हिजबुल मुजाहिदीन ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें सन 2014 के अप्रैल महीने में हुए धमाके की भी जिम्मेदारी शामिल है, जिसमें 17 लोग जख्मी हुए थे। माना जा रहा है कि अमरीका के इस फैसले से भारत पाकिस्तान पर यह दबाव बढ़ा सकेगा कि वो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। याद रहे कि पिछले साल कश्मीर में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पाकिस्तानी सरकार की ओर से बुरहान वानी को शहीद करार दिया गया था। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
कश्मीरी चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में और जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी मानसी दास स्टूडियो में मौजूद है।
संदीप जी, माना जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन पहला चरमपंथी संगठन है जिसमें अनिवार्य रूप से कश्मीरियों को सदस्य बनाया गया और जिम्मेदारियां दी गई। अमरीकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार ये संगठन आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर से के भारत से अलग होकर पाकिस्तान में शामिल किए जाने का समर्थन करता है। साल 1989 में बने इस संगठन के कभी पाकिस्तानी खुफिया सेवा ISI के साथ निकट संबंध हुआ करते थे। माना जाता है कि इस संगठन का करीबी नाता अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और 80 के दशक में मुजाहिदीनों की अगुवाई करने वाले कबायली नेता गुलबुद्दीन हिकमतियार से भी रहा है। हिकमतियार को बुच्चर ऑफ काबुल यानी काबुल का कसाई भी कहा जाता है। एक समय हिजबुल के लड़ाकों को अफगानिस्तान में मौजूद कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती थी। 90 के दशक के आखिर में तालिबान ने इन कैंपों को तबाह कर दिया, जिसके बाद ये कैंप पाकिस्तान के हजाना इलाके और पाकिस्तानी कश्मीर में चले गए। संगठन को एक बड़ा झटका 2001 में लगा जब भारतीय कश्मीर संगठन के कमांडर माजिद डार ने भारतीय सेना के खिलाफ एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। उनके इस कदम से पाकिस्तान में संगठन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सकते में थे। इस कारण संगठन में पड़ी दरार बढ़ी और बाद में माजिद डार की हत्या कर दी गई। इसी साल 26 जून को अमेरिका ने सैयद सलाहुद्दीन का नाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल किया और उन्हें अमेरिकी सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा माना। भारत सरकार सैयद सलाहुद्दीन को कई आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानती है। भारत के मुताबिक वो पाकिस्तान में रहकर कश्मीर में अभियान चला रहे हैं। मई 2011 में भारत ने पाकिस्तान को 50 मोस्ट वॉन्टेड लोगों की जो सूची सौंपी थी, उस सूची में सैयद सलाहुद्दीन का भी नाम था।
कश्मीरी चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में और जानकारी दे रही थी मानसी दास।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
रुख कर रहे हैं भारत का, जहां तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर कर्नाटक के बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीन शुरू की गई है। इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन पहले बात बिहार की, जहां बाढ़ की वजह से अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं। बाढ़ प्रभावित अररिया जिले से सुनिए नीरज सहाय की आंखों देखी।
सीमांचल के अररिया का जिला प्रशासन अपनी पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहा है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित गांव के लोगों से मिलने पर सच्चाई खुद ही सामने आ जाती है। अभी मैं हरिया पंचायत के बलुआ गांव के करीब 100 मीटर आगे पानी के बीचों बीच चल रहा हूँ। पानी मेरे घुटने के थोड़े ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन इसकी तेज़ धार को मैं आसानी से महसूस कर पा रहा हूँ। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, वहाँ दूर दूर तक पानी, डूबे मकान और मृत मवेशी बहते नजर आ रहे हैं। कुछ ग्रामीण मेरे साथ पानी में खड़े हैं।
बहुत खराब स्थिति है यहाँ।
राहत शिविर तो लेकिन चल रहा है।
चल रहा था सर, कल आया जब पानी घटने लगा तो बोर्ड तीन चार बोर्ड आया, उसमें भी कुछ आदमी ही निकल सका। शाम हो गया, बाकी छोड़ के वो चले गए कि नहीं अब हमने करें।
दो दिन के बाद अभी भी आदमी टीन पर चढ़ चढ़ के अभी तक घर में पानी उसका है, और दो दिन के बाद प्रशासन आया, रोड पर ही जो चूरा मुड़ी हल्का फुल्का देना था वो दे दिया। बाकी गांव में अभी भी आदमी फंसे हुए हैं। बाकी DPRF का टीम आया, उसके बाद थोड़ा इधर उधर मतलब नाम लिखाया, फोटो खिंचाया, उसके बाद चल दिया। कितना आदमी मर करके फंस गया इसका कोई गिनती नहीं है।
फिलहाल गांव में पानी नहीं है, लेकिन बगल के बांसबाड़ी, रामपुर, मोहनपुर, खरैया बस्ती आदि गांव अब भी पानी में डूबे हैं। रामपुर मोहनपुर के ग्रामीण भी यहां हैं।
हम लोग यहां चार रोज से जो भर गला पानी है। हम लोग सार्वजनिक तौर पर DM साहब को फोन किए थे कि सर हम लोग यहां से निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो DM साहब आश्वासन दिए कि हम राहत भेज रहे हैं।
आदमी मोटा मोटी सर 5 गए, मिल ही नहीं रहा, लापता रहे ना सर। हम लोग छत पे रह रहे हैं, छत पे, कोई गाछ पे, कोई पानी पे,
लंका जैसा वहां टप्पू बना हुआ है।
प्रशासन के अनुसार बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने के लिए 140 नाव और बोट चलाए जा रहे हैं, लेकिन गाँव जाने पर यह दावा खोखला सा लगता है। नीरज सहाय, BBC अररिया।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
जब अम्मा कैंटीन का खाना मशहूर हुआ तो बहुत सारे राज्यों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस योजना पर बहुत ध्यान दिया और अपने चौथे बजट में 100 करोड़ रुपयों का आवंटित किया। बहरहाल विधानसभा चुनाव के वर्ष में उन्होंने कल योजना को लागू भी कर दिया। इंदिरा कैंटीन में सुबह का नाश्ता 5 रुपये है और दोपहर और रात का खाना 10 रुपये है। और आम लोग इस खाने के बारे में क्या कहते हैं, हमने यह सवाल हासन जिले के होले नरसिंहपुर के स्वर्ण गौरी से पूछा। उन्होंने कहा,
सरकार ये जारी रखना है 10-20 साल जारी रखना है। खाना अच्छा है, क्वालिटी है, टेस्ट है, ये कंटिन्यू करना।
बेंगलुरु के महेंद्र राय इसीलिए आए थे कि वो खाने की गुणवत्ता का परीक्षण करें। उन्होंने बताया,
हमको कोई ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ आकर के खाने का। मैं खुद कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस का इस तरह का स्कीम जो चल रहा है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे।
तो आपको क्या लगता है अभी, क्या कांग्रेस लोग यहाँ ऐसा खाना खा के कांग्रेस को वोट करेंगे?
अगर ये लोग कंटिन्यू रखेगा ऐसे, ये नहीं मोटिव रहे जब ओनली फॉर इलेक्शन के लिए ये शुरू करें और फिर बाद में इसको हवा कर दे, इसको कंटिन्यू रखे तो जरूर सक्सेस।
मतलब क्वालिटी अगर मेंटेन किए तो।
हाँ।
NN रेड्डी आम लोगों की राय के बारे में कहते हैं,
सर जयललिता को स्टार्टिंग से करा, इधर टाइम नहीं अभी करा। सम आदमी क्या बोलता है वो इलेक्शन को करता है का बोलता है, सम बड़े सच्चाई का बोलता है।
इस बात में कोई शक नहीं है कि कम दाम का खाना आम लोगों के लिए फायदेमंद होता है। इसका राजनीतिक फायदा तमिलनाडु के अम्मा कैंटीन से पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को मिला। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इससे कितना फायदा होगा इसका पता अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
कार्यक्रम में आगे सुनेंगे आप जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से एक खास बातचीत, लेकिन पहले दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या बयां कर रहे हैं, आइए जानते हैं एक बार फिर मानसी दास से।
सबसे पहली खबर हिंदुस्तान टाइम्स में जो छपी है वो आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कल 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में 2 पूर्व जजों की एक पर्यवेक्षक समिति बनाई है। ये समिति जांच करेगी कि सिख विरोधी दंगे से संबंधित जो 240 मामले हैं उनकी जांच करेगी। अदालत ने समिति से दंगों से संबंधित मामलों को बंद करने के SIT के फैसले की भी जाँच करने को कहा है और कहा है कि इसकी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सौंपी जाए। ٹائمز آف انڈیا میں چھپی ایک خبر کے انوسار پاکستانی سینا کی اور سے نینترن ریکھا پر لگاتار ہو رہے یدھ ورام کے الگھن کو دیکھتے ہوئے جموں اور کشمیر سرکار نے سیما پر موجود گاؤں کے نزدیک 100 بنکر بنانے کا فیصلہ لیا ہے۔ اخبار نے راجوری کے ڈپیوٹی کمشنر شاہد اقبال چودھری کے حوالے سے بتایا ہے کہ نوشیرا میں گاؤں کے نزدیک بنکر بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے اور یدھ ورام کے الگھن کی صورت میں ان بنکروں میں 1200 سے 1500 لوگ آ سکیں گے۔ दैनिक जागरण में छपी एक खबर के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन ना करने पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ताज पैलेस होटल, ताज विवांता और जोरबा एंटरटेनमेंट को 7 लाख रुपए और क्राउन प्लाजा, दी ललित और होटल मेट्रोपॉलिटन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कई अन्य होटल और बैंक्वेट हॉल पर भी जुर्माना लगाया गया है। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने स्मार्ट फोन बनाने वाली 21 कंपनियों को नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि उनके मोबाइल फोन डेटा कितना सुरक्षित रखते हैं। सरकार ने इन कंपनियों से कहा है कि ये जल्दी ही ये जांच करें और सरकार को इसके बारे में बताएं। जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है वो कंपनियां हैं एप्पल, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, वीवो, ओप्पो, शाओमी और जियोनी। ये कंपनियाँ हैं जिनको नोटिस मिला है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद अभी बाकी है भारत पाकिस्तान के विभाजन पर बीबीसी हिंदी की खास सीरीज की अगली कड़ी, लेकिन पहले आइए सुनते हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ हालिया चर्चाओं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला क्या राय रखते हैं। उनसे बात कर रहे हैं श्रीनगर में हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर।
आर्टिकल 35A का मामला चल रहा है, काफी विवाद हुआ उस पर, आपने भी कई बैठक बुलाई थी श्रीनगर में, तो किस तरह के खतरात का खदशा है जम्मू कश्मीर को, आप ये बयान करेंगे?
ये रियासत हिंदुस्तान में मकदम नहीं हुई जैसे बाकी रियासतें हुई। हमने इलहाक किया, कुछ वादों पे इलहाक हुआ। महाराजा साहब ने जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किया और उसके बेटे ने भी ये कहा, पार्लियामेंट में कहा, ये चीज़ें हमने आपके हवाले की, बाकी सारा यहाँ था। ये चाहते हैं कि जो हकूक हमारे हैं, जो 35 हमें देता है, जो महाराजा हरि सिंह ने 27 मई को 1927 में जो पास किया, प्रॉपर्टी का यहीं का रख सकते, कोई यहाँ बस्की नहीं आ सकता, इसलिए कि यहाँ का तशख्स मेंटेन हो, डोगरा कल्चर बदल ना जाए, कश्मीरी कल्चर बदल ना जाए, बौद्धिस्ट कल्चर बदल ना जाए। इसको उड़ाने से ये सब कल्चर ख़त्म हो जाएंगे और उनकी कोशिश है लोगों को बस्किंग करने की। यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी है इसको ख़त्म करने की, एक ख़ास जमात हिंदुस्तान की जिसे आरएसएस कहते हैं, वो चाहती है कि कश्मीर का जो इलाका है जिन बुनियादों पे किया गया था वो हटाई जाए, क्योंकि आज उनकी हुकूमत है मरकज़ में, वो ये समझते हैं कि इसको इस्तेमाल करके वो ये करेंगे।
लेकिन एनडीए में थे आप?
हाँ, एनडीए में
तो
था।
कैसा अनुभव रहा बीजेपी का आपका?
देखिए, उस वक्त वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी बहुत डिफरेंट आदमी थे। वो ये जानते थे कि कश्मीर को अगर साथ रखना है तो सबके साथ चलना है। अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, तो जो एक मुहिम चली थी वो रुक गई। अच्छा, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने कोशिश की थी उसको आगे चलाने की, मगर कुछ उनके जमात के लोगों ने भी उनका उतना भरपूर साथ नहीं दिया।
अच्छा, जो मौजूदा वजीर आजम हैं हिंदुस्तान के, नरेंद्र मोदी, कैसी शख्सियत है वो, कैसे लीडर उनको आप मानते हैं?
इन्होंने अभी तकरीर की रेड फोर्ट से, जिसमें ये कहा कि कश्मीरियों को दिल से लगाइए, ये अच्छी बात है, मगर क्या आगे इस पर अमल होगा या नहीं होगा वो बात देखने की है, इसीलिए लोगों में शक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आपकी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी वावेला कर रही है, जो पिछले साल 6 महीने यहाँ पे हुआ, काफ़ी बच्चे मारे गए प्रदर्शनों में। आपकी सरकार 2010 में थी, 120 बच्चे मारे गए, आप लोगों ने क्या किया उस टाइम,
क्या करते, तो किसने करवाया उनको, क्या उससे,
तो
क्या मुझे ये बताइए, उससे पाकिस्तान बना, उससे यहाँ तब्दीली आई? ये उन लीडरों से पूछिए हुर्रियत के, जिन्होंने इन बच्चों को कुर्बान करवाया।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में कहा जा रहा है, जो आम हलकों में कहा जाता है कि फारूक साहब जब इकतदार में होते हैं तो कुछ और बताते हैं, या इनकी पार्टी,
लेकिन आप जर्नलिस्ट की मेहरबानी है, फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में भी वही बात करता है, यहाँ भी वही बात करता है, जहाँ भी होगा मैं वही बात, मैंने कभी नहीं कहा हम पाकिस्तान का हिस्सा है।
लेकिन आजकल आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करने,
पहले भी मैं कहता था,
मुझे याद है एक स्टेटमेंट आपका आया था जब आपने कहा था पाकिस्तान पर बम मारो,
क्यों नहीं मारो, मैं उनमें से नहीं हूँ, جو قدم پیچھے اٹھائے گا. میری ماؤں کے ساتھ ظلم ہو, زنا ہو میری بہنوں کے ساتھ, ہمارے اسکول جلائے جائیں, ہمارے دفتر جلائے جائیں, تو میں چپ رہوں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, جو کشمیر کے جو جن پہ کافی کیس لگے ہیں جو سٹون پیلٹنگ میں انوالو ہے, تو کیا ان کو عام معافی ملنی چاہیے؟
میں جب تھا وزیر اعلیٰ اس وقت 70 بچے تھے جو ملٹنسی میں بہت سخت انوالو تھے. اگر آپ جگ موہن کی کتاب پڑھیں اس میں اس کا ذکر ہے, میرے پہ وہ آروپ لگایا اس نے, مگر وہ کشمیری بچے ہیں. اگر ہم ان کو مین اسٹریم میں نہیں لائیں گے تو کہاں پھینکیں گے ان کو ہم؟ اس لیے اس وقت ایک اسکیم بنائی گئی, ان کو لایا گیا, مین اسٹریم میں لایا گیا, ان کو چھوڑا گیا, اور وہ آج اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں, شادی کی ہوئی ہے, بچے ہیں اور اپنے کام کر رہے ہیں. بچے بھی کبھی کبھی غلط راہوں پہ چل جاتے ہیں.
کیا بندوق کی ریلیونس کشمیر مسئلے کی گتھی کو سلجھانے کے لیے ابھی تک ریلیونٹ ہے؟
بندوق کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہوگی, بندوق صرف بربادی لا سکتی. بندوق سے کوئی معاملہ حل ہوا آج تک دنیا میں؟
یہ تھے نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ, اور اب بی بی سی سنواد داتا فیصل محمد علی کے ساتھ چلیے, ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بھارتی پنجاب کے اس علاقے میں جسے راوی ندی بارش کے موسم میں بھارت سے جدا کر دیتی ہے.
گنیے کے بیٹ کا سفر لمبا ہے, پہلے راوی کی تیز دھار, پھر ندی کے کنارے پھیلی ریت, اور ہاں بارڈر سیکیورٹی فورس کا پوسٹ بھی تو ہے جہاں موجود جوان آپ کی پہچان رجسٹر میں درج کرتے ہیں. ان سب کو لانگتے اور بچتے بچاتے جب ہم جسونت سنگھ فوجی کے گھر پہنچے تو مسکراتے ہوئے وہ کہتے ہیں,
پہلی بات یہ بولتے ہیں کہ دور کون جو دریا کے پار, کب بیڑی پڑے, کب پانی آ جائے, کب بیڑی ڈوب جائے, کوئی پتہ نہیں. ایک موت قدرتی ساری روز موت ہوتی ہے.
فوجی تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقریباً کلومیٹر بھر لمبی پھیلی ریت کے میدان کو پہلے پیدل اور پھر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پار کرنا پڑا. ناؤ کی سواری سے چھٹکارا بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ کہتے ہیں,
وہ دقتیں بہت ہیں, وہ بتانے سے باہر. یہ صحیح پوچھو نا, اتنی دقتیں ہیں کہ انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے.
پاکستان کی سیما پر بسے گنیے کے بیٹ سے سب سے نزدیک ہندوستانی شہر ڈیرا بابا نانک, جو اس کی تحصیل بھی ہے, 14 کلومیٹر دور ہے. پاکستانی شہر ناروال محض 8 کلومیٹر کے فاصلے پر. سیلاب کے دنوں میں جب راوی اوفان پر ہوتی ہے تو گنیے کا بیٹ بھارت سے کٹ کر نو مینس لینڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک طرف افنتی ندی اور دوسری طرف پاکستانی سیما کی طرف لگے کٹیلے باڑ. سرپنچ سکھدیو سنگھ کہتے ہیں,
تو جب زیادہ باڑھ آئے گی, جب زیادہ پانی آئے گا تو ہمارا جو پنڈ ہے ادھر کٹ ہو جائے گا. ایک دن رہے, دو دن رہے, تین دن رہے, پنڈ ہمارا گاؤں جو اپنے ہندوستان سے کٹ ہو جاتا ہے. کوئی ادھر اٹکا رہتا ہے, کوئی بھی ادھر اٹکا رہتا ہے.
اور اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو؟ سکھدیو سنگھ کہتے ہیں, بیمار پھر تو رب کے آسرے ہیں جی. گاؤں کے اسپتال کے آگے ہمیں میجر سنگھ ملتے ہیں جو دھان کی بوائی کے لیے آئے ہیں.
پیسے مل جاتے ہیں اس کے 25-26 روپیہ کے لے کا, دیکھ ادھر ادھر سے کوئی 100-200 کم مل جائے گا.
یہاں کم ملے گا؟
نہیں, ادھر وعدہ ملے گا,
یہاں زیادہ ملے گا,
ادھر وعدہ مل جائے گا.
اگر مزدور فینسنگ کے پار مزدوری کے لیے جائیں گے تو ریٹ اور بڑھ جاتے ہیں. منڈی گاؤں سے لگ بھگ 20 کلومیٹر دور ہے. مال کو پہلے ناؤ پر لاد کر ندی پار کرنا ہوتا ہے اور پھر منڈی پہنچتے ہیں, جس سے کھیتی میں آنے والا خرچ بڑھ جاتا ہے. سکھدیو سنگھ کہتے ہیں,
یہ بیڑی نہیں آئی ہے, چھوٹی آئی ہے, اس کا اس میں ٹریکٹر لوڈ ہو کے نہیں آتا. پہلے بیڑی چوڑی تھی, اسے یہ چوڑی کام ہے, ٹریکٹر لوڈ نہیں ہو رہے, ٹریکٹر لوگوں کے ادھر اڑے ہوئے ہیں صاحب. یہ اس کے آگے سے اونچی بھی زیادہ بڑی ہے, موٹر سائیکل نہیں اس میں, مطلب بہت کٹھنائی سے مطلب لوڈ کیے جاتے ہیں.
ٹریکٹر خراب ہو جانے پر بھی اسے ٹھیک کروانے کے لیے دوسری طرف لے جانا ضروری ہے. مزدوروں نے سامان اسپتال کے برآمدے میں رکھا ہوا ہے, بالکل سامنے ایک چھوٹا سا ٹینٹ بھی لگایا گیا ہے. اسپتال کے کمروں کے دروازوں میں ہلکے زنگ لگے تالے پڑے ہیں, جیسے کافی دنوں سے کھلے ہی نہ ہوں. گرامین امریک سنگھ کہتے ہیں,
ڈاکٹر نہیں آتے ہیں, کبھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آتے ہیں, جب جی کہتا آتا ہے, جب جی کہتے چلے جاتے ہیں.
سیماورتی علاقے میں ساکشرتا کی در پنجاب کے دوسرے علاقوں کی بنسبت کم ہے. جانے مانے سماج شاستری پروفیسر جگروپ سنگھ شیخوں کے ذریعے کی گئی ایک اسٹڈی میں کہا گیا ہے کہ بارڈر ایریا میں ساکشرتا کی در پنجاب کے دوسرے علاقوں سے کم ہے. سیما کے کھیتر میں کیے گئے شودھ میں یہ سامنے آیا کہ ان میں ساکشرتا کی در انہی ضلعوں کے اندرونی علاقوں سے بھی کم ہے. جیسے 2001 کی جنگننا کے انوسار فیروزپور میں ساکشرتا کی در 61% سے ادھک ہے, تو بارڈر کے علاقوں میں یہ محض 57 प्रतिशत है। अवतार सिंह इसी गांव के हैं और आजकल वो छुट्टियों में दुबई से, जहां वो ट्रॉली चलाते हैं, गांव आए हुए हैं।
मेरे पे मैं जब से होश संभाला इधर 7 गांव थे पहले, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, पीछे से चले गए सब छोड़ के। अब ये सिर्फ एक गनिया ही पिंड है, इसमें से बहुत आदमी चले गए पीछे, बिरला बिरला घर रह गया, कोई ज़्यादा आबादी नहीं रह गई। अभी कोई कोई बुढ़ा बुढ़ा आदमी रहता है, हम लोग सुबह आते हैं शाम को वापस चले जाते हैं।
भारतीय सेना की 7th कैवेलरी का हिस्सा रहे जसवंत सिंह फौजी के बेटे भी बटाला शिफ्ट हो चुके हैं, जहां वो स्कूल चलाते हैं, लेकिन रंधावा कहते हैं कि उन्हें यहां की आदत हो गई है। कभी टैंक चलाने वाले जसवंत सिंह पूरे इलाके में अपनी ट्रैक्टर दौड़ाते रहते हैं और हमें भी उस पर बिठाकर वो पुल दिखाने ले जाते हैं जो सालों से तैयार हो रहा है और जिसके बनने के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ आसान हो जाएंगी, लेकिन पुल है कि तैयार ही नहीं हो रहा। हंसते हुए पंजाबी में वो एक कहावत सुनाते हैं, जितना आदमी तरक्की कर रहा है दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, जब तेज चलने वाली गाड़ियाँ बन गई हैं तो इंसान लेट पहुँचता है। ऐसा कहते वक्त उनकी निगाह पुल की तरफ है। फैसल मोहम्मद अली, BBC, गनिये के बेट, गुरुदासपुर, पंजाब।
और अब खेल समाचार।
BBC खेल समाचार के साथ मैं हूं वैभव दीवान। आज इंग्लैंड में टेस्ट मैच क्रिकेट का एक ऐतिहासिक दिन है। इंग्लैंड वेस्टइंडीज के बीच शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है, जिसे गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। टेस्ट क्रिकेट को रोमांचक बनाने के लिए डे नाइट क्रिकेट की शुरुआत 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच लाइटों के नीचे गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेला गया था। क्या टेस्ट क्रिकेट में ये परिवर्तन क्रिकेट का भविष्य है? BBC हिंदी ने जाना इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार अयाज मेमन से।
ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, दुबई में या UAE में खेला गया है पिंक बॉल क्रिकेट पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच में। यहाँ पर वेस्टइंडीज आ रही है इंग्लैंड में। वेस्टइंडीज जो है काफी हल्की टीम है फिलहाल, तो ये पता नहीं है किस तरह से वो कोप कर सकेगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अब बहुत मेरे ख्याल से उरूज पे है और जिस तरह से साउथ अफ्रीका को हराया तो इन फॉर्म भी है प्लेयर्स। लेकिन मुझे लगता है कि दर्शक, और जहां तक मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़े हैं अब तक, तो टिकट के एडवांस सेल्स भी काफी अच्छे हुए। एक तो ये है कि इंग्लैंड की टीम अच्छी करी है, दूसरा ये सब देखना चाहते हैं कि ये पिंक बॉल क्रिकेट कैसे खेले जा रहा है टेस्ट मैचेस के लिए।
इंग्लैंड वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज एजबेस्टन में खेला जाएगा, जो डे नाइट होगा, और इसे गुलाबी गेंद से खेला जाएगा, जिसके बाद के 2 मैचेस दिन में खेले जाएंगे। अब बात शतरंज की, जहां महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को वापसी के बाद पहले मैच में पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट के दूसरे दिन रूसी खिलाड़ी इयान नेपोमुचिन ने मात दी। 3 ड्रॉ और इस हार के बाद 54 वर्ष के पूर्व विश्व चैंपियन कास्परोव से आक्रामक प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। अब बात टेनिस की, जहां भारत के लिएंडर पेस और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेव की जोड़ी सिंसिनाटी ओपन में पुरुष युगल पहले दौर में स्पेन के फेलिसियानो लोपेज और मार्क लोपेज से हारकर बाहर हो गई है। वहीं भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके क्रोएशिया के साथी इवान डोडिस को पहले दौर में बाय मिला है। अब बात महिला टेनिस की, जहां 5 बार की मेजर चैंपियन रूस की मरिया शरपोवा को अमरीकी ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड दे दिया गया है, जिससे वे 15 महीने के प्रतिबंध के बाद वापसी करते हुए अपने पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में खेलेंगी। BBC खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचारों के साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं।
BBC समाचार। अमेरिका ने भारत प्रशासित कश्मीर के सबसे बड़े सशस्त्र संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को विदेशी चरमपंथी संगठन घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सियरा लियोन में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस सप्ताह राजधानी फ्रीटाउन में बाढ़ और पहाड़ खिसकने के कारण मारे गए 400 लोगों में से लगभग आधे लोगों के शवों को दफन कर दिया गया है। अमेरिका के शार्लोट्सविल में हाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों के लिए दोनों पक्षों के लोगों को जिम्मेदार ठहराने के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि इस विवाद के बीच वो ट्रंप के साथ हैं। भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि वो ब्लू व्हेल चैलेंज मोबाइल गेम के लिंक को हटाने में विफल होने वाले वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करेगी। स्पेन के तटरक्षक बलों ने कल मोरक्को से यूरोप की तरफ आने वाले लगभग 600 प्रवासियों को 15,000 जहाजों से बचाया है। BBC समाचार,
मुख्य समाचार सुने आपने मानसी दास से, और कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान, और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया सिंधु वासिनी त्रिपाठी ने। नमस्कार, भारत में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। तब तक bbchindi.com है आपके साथ। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।